أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. تو ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس وقت تسلیم بہشتی زیور میں سے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق جو ہے وہ ہماری باطنی اصلاح کے ساتھ ہے، اور یہ باطنی اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ باطنی اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک بات تو اتنا ہی کافی ہے دلیل کے طور پر کہ قرآن نے ایسا فرمایا ہے. کیا قرآن نے فرمایا؟ قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا. ٹھیک ہے، دو مختلف جگہوں کے اوپر کہ تحقیق کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پا گیا. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کس کے لیے قرآن نے فرمائی؟ جس نے کہ اپنا تزکیہ کر لیا. تو تزکیہ ہی کو باطنی اصلاح کہتے ہیں. باقی چیزوں کے مقابلے میں گارنٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، بلکہ مقابلے میں کیا، اس کے ساتھ تو کنفرم گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے ساتھ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے تو عبادتوں کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عبادتیں قبول بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ عبادتیں اس کو جنت کے اندر داخل بھی کروائیں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت نیک کام کرتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ علم اس کو جنت کے اندر داخل کروائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلوائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پہنچائے گا اس کو جنت کے اندر. اسی طریقے کوئی بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتا ہے، کہ صدقہ خیرات کا کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر پہنچے گا اس کام کی وجہ سے. لیکن باطنی اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی دلیل کافی ہے، جس کو کہ ہم نقلی دلیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نقلی دلیل کا مطلب فیک دلیل نہیں ہوتا، بلکہ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریولیشن سے نقل کی گئی دلیل، نقل کی ہوئی دلیل، جس کو کہ نیریٹڈ کہتے ہیں، یا وہاں سے دیکھ کر کے سنائی گئی، اس وجہ سے اس کو نقلی دلیل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو نقلی دلیل ہے اور کافی ہے، لیکن اگر عقلی دلیل مانگی جائے کہ انٹلیکچولی اسپیکنگ یا لاجیکلی اسپیکنگ، اگر آپ اس کو کہیں کہ جی کیوں باطنی اصلاح کے ساتھ یہ گارنٹیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بھی بڑی آسان ہے سمجھ میں آنی، اس لیے کہ جب باطن کی اصلاح ہو گئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر وہ جو بھی کرے گا، چاہے وہ علم کا کام کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرے، وہ عبادت کا کام کرے، ٹھیک ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ چاہے کم کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی باطنی اصلاح ہو چکی ہے. اگر اس کی باطنی اصلاح نہیں ہوئی ہے تو پھر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے اس کی، کیونکہ ہم تو بات ہی اس وقت کر رہے ہیں نا جب باطنی اصلاح ہو گئی ہے. تو جب باطنی اصلاح ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو اخلاص عطا ہو گیا ہے، اخلاص اس کو مل گیا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق ہی عمل کرے گا. ٹھیک ہے، وہ سنت کے خلاف عمل نہیں کرے گا، بے شک تھوڑا عمل کرے گا لیکن سنت کے مطابق عمل کرے گا. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سنت کے وہ اخلاص کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے اور سنت کے مطابق بھی کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ بغض اور عناد تو نہیں ہے نا کہ تم جو کر لو میں نے تم سے قبول نہیں کرنا، میں نے تمہیں جہنم میں ہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بغض والا معاملہ تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بندہ یہ دو شرائط پوری کر لیتا ہے تو پھر کیوں اس کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر اس نے جنت میں جانا ہے. تو یہ نقلی یعنی عقلی دلیل بھی بہت ہی آسان ہے سمجھ میں آنا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بات کہہ دی کہ گارنٹیڈ ہے. لیکن باطنی اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کوئی کہے کہ جی یہ جو دین کا ایک شعبہ ہے جس کو کہ تصوف اور سلوک کہتے ہیں، تو تصوف اور سلوک میں جس نے ایڈمیشن لے لیا تو وہ گارنٹی اس کو جنت کی مل گئی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دس از ناٹ اینالوگس ٹو دیٹ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کسی شیخ کے ساتھ بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہے آپ کو جنت گارنٹی ہو گئی، نہیں، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ شیخ کے ساتھ بیعت کر لینے سے جو ہے وہ انسان کو جنت گارنٹی ہو جاتی ہے، ہم نے کہا ہے باطنی اصلاح کر لینے سے جنت گارنٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق باطنی اصلاح کے ساتھ ہے، اگرچہ کہ اس کو پڑھ لینے سے بھی باطنی اصلاح نہیں ہو جاتی خالی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کل ہم نے ڈسکس کیا تھا تھوڑا بہت. چلیں آگے چلتے ہیں. زیادہ بولنے کی حرص اور اس کا علاج، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نفس کو زیادہ بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس سے وہ کئی گناہوں میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ہی سارا کا سارا نفس کا ہے، جو کہ ہمارے وجود کے اندر ہمارے دشمن کے طور پر موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری بھلائی نہیں چاہتا، یہ اس کو ہماری خیر خواہی کے ساتھ، اس کو ہمارے اچھے انجام کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ خواہشات کسی بھی طریقے سے پوری کرے، اٹ ڈز ناٹ کیئر، ٹھیک ہے؟ اس نے بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، اس نے مزے لینے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو چاٹ لگی ہوتی ہے مزوں کی، ٹھیک ہے؟ جس کو فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ جو ٹیسٹ بڈز ہوتی ہیں نا، ٹیسٹ بڈز، ان کو ٹیسٹ بڈز کے مزوں کی چاٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو یہ نہیں پرواہ ہے کہ جی انہوں نے چائنیز کھانا ہی کھانا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ یا انہوں نے جو ہے وہ صرف نارتھ انڈین ڈشز کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ یا انہوں نے صرف جو ہے وہ کوئی عربی ڈش کھانی ہے، نہیں، ان کو جہاں سے بھی ٹیسٹ بڈس کا مزہ ملے گا نا وہ وہاں سے کھائیں گے، چاہے وہ چائنیز ڈش میں ملے، چاہے وہ ساؤتھ افریقن ڈش میں ملے، چاہے وہ یورپین ڈش میں ملے، چاہے پاکستانی ڈش میں ملے، دے ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو چاٹ لگی ہوئی ہے نا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، جنسی جو مزے ہوتے ہیں ان کی چاٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس کو جنسی مزوں کی چاٹ لگی ہے نا، اب دے ڈونٹ کیئر کہ گوری سے ان کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، کہ کالی سے ان کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، کہ سانولی سے ان کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ مثالیں، دو مثالیں ہمارے سمجھ میں آ گئی نا، تو پھر نفس کی بھی کیفیت کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ نفس کو تو مزے پورے کرنے. اب یہ مزے جو ہے وہ کھانے کے ذریعے سے پورے ہو، یہ مزے زبان چلانے کے ذریعے سے پورے ہو، یہ مزے کانوں کے ذریعے سے پورے ہو، یہ مزے جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے پورے ہوں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وہ اس نے بس مزے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کے مزے پورے ہو رہے ہوتے ہیں نا، چاہے جس طرح سے بھی پورے ہو رہے ہوں، تو اس کو تقویت مل رہی ہوتی ہے، قوت مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ طاقتور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ طاقتور ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ذرا جواب اس کا آپ لوگ دے دیں تاکہ کچھ ریویژن ہو جائے. پیچھے ایک بہت اہم سبق ہم نے پڑھا تھا، جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کیسے پھر وہ ہمیں برباد کرتا ہے؟ روح کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے بربادی کیسے ہوتی ہے؟ روح کمزور ہو گئی تو بھائی، روح کمزور ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ بس اب جہنم میں جانا ہے. تو وہ ہمیں کیسے پھر نقصان پہنچاتا ہے جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو؟ جی مثال نے دے دے کے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو. تھوڑا سا کوشش کریں کہ اگرچہ کہ ہم نے کوئی امتحان نہیں رکھا اور کوئی جو ہے وہ آپ لوگوں سے ہم ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کہ جی آپ ریویژن وغیرہ کریں، لیکن اگر یہ جو باتیں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں یہ آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بے فائدہ لگ رہی ہیں تو پھر تو ہم آپ سے نہیں کچھ کہتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر فائدہ مند لگ رہی ہیں تو پھر تھوڑا کوشش کریں کہ ان کی ریویژن کرنے کا نا، نوٹس بنا کر کے ذرا نوٹس کو ایک نگاہ دوبارہ دیکھ لینے کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ اوور آل لائف سے متعلق ہے یہ کورس، ٹھیک ہے؟ یہ کورس جو ہے وہ کوئی ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا، ہو سکتا ہے آخر میں دے بھی دیں، کوئی بنا کر کے پرنٹ کر کے آپ کو دے بھی دیں، لیکن ایسا کوئی ہم نے آپ کو وعدہ تو نہیں کیا آپ کے ساتھ، تو کوئی سرٹیفکیٹ کے لیے تو آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ठीक है, कोई आपने नंबर भी नहीं बनाने हैं इसके अंदर, कोई आपने जो है वो तमगा भी नहीं सजाना है, ठीक है, ये तो अपनी ज़िंदगी की बेहतरी की खात की नीयत से आप पढ़ रहे हैं ना, जो आप टाइम लगाते हैं। तो जब इस नीयत से पढ़ ही रहे हैं तो भाई थोड़ा सा रिविजन अगर कर लें तो ये चीज़ें फिर यानी हिस्सा बन जाएंगी फिर, और ये आपके अमल में भी फिर इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और ये कि आप दूसरों को भी फिर ना, जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम लोग हैं, जिनमें सबसे पहले औलाद आती है, ठीक है, और दूसरे अहम रिश्तेदार आते हैं, तो उनको भी फिर आप समझा सकेंगे। अगर सुना, टाइम भी लगाया और सुना और उसके बाद फिर भूल गए, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, तो फिर ये टाइम लगाने का फायदा तो इतना ना हुआ ना। तो वक्त को इंसान को ना जाया नहीं होने देना चाहिए कि बस सुन रहे हैं और भूल रहे हैं, सुन रहे हैं और भूल रहे हैं, ठीक है। तो रिविजन से जो है ना फिर वो चीजें आपको याद रह जाएंगी। अल इल्मु यजीदु बित्तकरार, इल्म जो होता है ना वो तकरार करने से यानी रिपिटेशन से, यानी जिसको हम रिविजन कहते हैं, रिविजन से ये बढ़ता है, ठीक है। तो इस नीयत से आप नोट्स जरूर से बनाएं, और इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं सुननी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग सुनने के लिए पता है क्या इतना डेडिकेटेड टाइम आप नहीं निकाल सकेंगे। तो नोट्स बना लें, थोड़ा थोड़ा सा लिख लिया करें किताब के ऊपर, और 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद क्लास के आप उसको एक नज़र देख लिया करें, तो बस काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो मिसाल दी थी लॉबी की, ठीक है, लॉबीज अमेरिका के अंदर जो लॉबीज होती हैं, तो उस मिसाल को सोच करके फिर आपको याद आता है कि क्या कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाता है अगर ये मजबूत हो जाए तो। जी, अमेरिका में जो लॉबीज होती हैं तो क्या करती हैं? किससे मनवाता है? अपनी मनवाता है, ठीक है, किससे मनवाता है? दिल को काबू अबू ये नहीं कर सकता, हाँ दिल को ये चित कर देता है, ठीक है, दिल को काबू कर लेता है, दिल को चित कर लेता है, लेकिन दिल को चित कर लेने से तो इसको अपना मकसद पूरा नहीं होता, इसको अपना मकसूद नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका मकसूद कैसे पूरा होता है, ये क्या करता है, किससे अपनी मनवाता है? भाई जब यहूदी लॉबी अमेरिका में स्ट्रांग हो जाती है तो यहूदी लॉबी किसके ऊपर अपना असर डालती है? कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर असर डालती है अपना यहूदी लॉबी? भाई यहूदी लॉबी तो अमेरिका के अंदर है ना, या गन लॉबी जो है अमेरिका के अंदर है, ठीक है, तो वो किस पे अपना असर डालती है? प्रेसिडेंट के ऊपर असर डालती है ना, या डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी जो भी होती है, प्रेसिडेंट तो वैसे भी अमूमन एक ऐसी बस एक दिखावे की चीज होता है, असल में तो जो उनकी काउंसिल्स होती हैं, जो उनके डिसीशन मेकर्स होते हैं, या सेनेट होती है, या जो भी होती है, ठीक है, कांग्रेस तो चलो बहस कर लेती है चीजों के ऊपर, ठीक है, एनीवे जो भी इनके थिंक टैंक्स होते हैं, डिसीशन मेकर्स होते हैं, CFR होता है, जो भी होता है, ठीक है, उनके ऊपर असर डालती है ना, डिसीशन मेकर के ऊपर असर डालती है। तो डिसीशन मेकर कौन होता है हमारे अंदर, जिसके ऊपर के हमारा नफ्स फिर अपना असर डालता है, उसके फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या होता है डिसीजन मेकर हमारे अंदर? दिमाग नहीं, अकल, ठीक है, लफ्ज दिमाग से एक फिजिकल चीज सामने आती है, अकल, ठीक है, अकल के फैसलों को फिर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और असल चीज यही होती है जिसके जब अकल के फैसले जो हैं वो गलत होने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है, फिर वो अकल जो है वो अल्लाह की रजा के फैसले करने की बजाय जो है वो शैतान की रजा के फैसले करना शुरू हो जाती है, नफ्स की रजा के फैसले करना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो समझ ही रही होती है कि जी वो अपने खैरख्वाही में, अपनी अपनी भलाई में फैसले कर रही है, हालांकि वो अपनी भलाई में फैसले नहीं कर रही होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप समझें कि मुल्क का जो प्रेजिडेंट होता है ना, कभी भी किसी मुल्क का प्रेजिडेंट जो है ना वो गद्दार नहीं होता, ठीक है, मुल्कों के प्रेजिडेंट्स कम अज कम जो है ना वो फेथफुल्स में से ही होते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो प्रेसिडेंट स्ट्रांग है, अकलमंद है, या वो बेवकूफ है और कमजोर है, ठीक है, तो ये होता है, गद्दार प्रेसिडेंट नहीं होता कभी भी, ठीक है, ये जो ना ये इनमें गद्दारी का मसला नहीं होता प्रेसिडेंट्स के अंदर, वरना वो प्रेसिडेंट नहीं बनते कभी भी, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता है गद्दार, मतलब अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनमें से कोई गद्दार हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट कभी गद्दार नहीं होता, या जो भी जो उनका चीफ होता है किसी मुल्क का, ठीक है। तो तो उसका गद्दारी का मसला नहीं होता, उसका जो है ना वो अकल की कमी का या उसकी बेवकूफ़ी का मसला होता है या उसकी कमजोरी का मसला होता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो अपने तौर पर वो मुल्क की भलाई में फैसले कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत वो फैसले जो होते हैं वो मुल्क के यानी नुकसान का बायस बन रहे होते हैं। तो वो नुकसान का बायस क्यों बन रहे होते हैं? इसलिए कि जो जो गद्दार होते हैं ना वो उसके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बड़ी आसानी से, बिकॉज इसके अंदर तो इतनी अकल होती नहीं है, ठीक है, और ये फिर अपनी कम अकली की वजह से जो है जो असल में मुल्क के वफादार होते हैं उन वफादारों को लिफ्ट नहीं कराता और गद्दारों को ज्यादा लिफ्ट कराता है, तो इस वजह से फिर ये ऐसे फैसले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि नफ्स को ज्यादा बोलने में भी मजा आता है, तो मजा जो आता है ना ये खाली ये नहीं है कि मजे आ गए और खत्म हो गया मामला, बल्कि जब इसको मजा आता है ना तो ये ताकतवर होता है, ठीक है, और इससे फिर ना वो गुनाहों में फंस जाता है। गुनाहों में कैसे फंस जाता है कि फिर वो अकल को इन्फ्लुएंस करता है और अकल फिर ऐसे डिसीशंस लेती है जो कि गुनाह वाले डिसीशंस होते हैं। झूठ बोलना, किसी को ताना देना, अपनी बड़ाई जतलाना, खौ मखा किसी से बहस व तकरार करना, ठीक है, मालदारों की खुशामद करना, ऐसा मजाक करना जिससे किसी का दिल दुखे, ठीक है, इन सब आफतों से बचना जब ही मुमकिन है कि जुबान की हिफाजत की जाए, ठीक है। तो अकल को जो है ना वो बेसिकली जुबान की हिफाजत करनी होती है, ऐसे डिसीशन लेने होते हैं कि उसकी जो उसके सबॉर्डिनेट्स में जो जुबान है तो जुबान जो है ना वो ये सारे काम ना करे, क्योंकि ये गुनाह के काम है, अल्लाह ताला की नाराजगी वाले काम है। अच्छा, तो इसकी हिफाजत का तरीका ये है कि जो बात कहनी हो तो वो जहन में आते ही ना कह डाले, ठीक है, जैसे ही वो कहते हैं ना कि जैसे ही वो बात आई फौरन जो है वो बक दी या फौरन जो है वो बोल दी, तो ये बेसिकली इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, ठीक है। तो ऐसे डिजास्टर में अपने आप को ना इन्वॉल्व करे, बल्कि पहले खूब अच्छी तरीके से सोच समझ ले, जिसको कहते हैं पहले सोचो फिर पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है, तो पहले तोड़ ले कि इस बात में गुनाह है या सवाब है, या ये कि ना गुनाह है ना सवाब है, जिसको लायानी कहते हैं, ऐसी बस बोलते रहे उसमें जाहिरी तौर पर कोई गुनाह भी नहीं है कि आपने कोई बात कर दी, जैसे हंसी मजाक बहुत ज्यादा जोक सुनाने का किसी को शौक होता है, बहुत ज्यादा हर एक के साथ ना कुछ जो है वो शुगल करने का शौक होता है, ठीक है, तो अब वो अगला बंदा भी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आप हर बात पे उसका दिल टूट रहा है या वो जलील महसूस कर रहा है, जिल्लत महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके इस तरीके से जो हर बात के ऊपर एक छेड़खानी वाली बात करने के शौक होता है ना जिन लोगों को, तो उससे बेशक उसको नुकसान ना हो रहा हो लेकिन आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जब ज्यादा बात बोलेंगे ना तो उसमें फिर गुनाह की बात भी ना शामिल हो जाएगी, बल्कि शैतान जो है वो शामिल करवा देगा उसके अंदर। अगर वो बात ऐसी है कि जिसमें गुनाह है तो बिल्कुल अपनी जुबान बंद रखो, और अगर अंदर से नफ्स तकाजा करे तो उसको इस तरह समझाओ कि इस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेना आसान है मगर दोजख का अजाब बहुत सख्त है, ठीक है। उसको समझाओ से मुराद ये है कि अपने आप को इस तरीके से समझाओ कि अगर मैंने नफ्स की बात मान करके इस वक्त ये बात कह दी ना तो अभी तो मैं ये कह जाऊंगा लेकिन फिर उसका नुकसान मुझे बहुत ज्यादा होगा, तो इस वक्त सब्र कर लेना जो है ना वो आसान काम है, और अगर मैंने कह दिया और अजाब वो जो गुनाह जो है वो लिखा गया तो फिर मुझे जहन्नुम का अजाब सहना पड़ेगा और वो बहुत सख्त है। अगर वो बात सवाब की है तो कह डालो, और अगर ना गुनाह है ना सवाब है तो भी मत कहो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी हदीस पढ़ी थी कि अच्छी बात कहना जो है वो खामोश रहने से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो अगर अच्छी बात है तो फिर उस पर खामोश ना रहो बल्कि कह दो, ठीक है, और इसके अंदर जाहिर सोचना पड़ता है कि जी किस जगह पे आप अच्छी बात कह रहे हैं, हर जगह अच्छी बात भी जो होती है वो भी कह देने की नहीं होती है ना, वरना कुछ लोग जो है फिर कुछ लोग क्या बल्कि आजकल ज्यादा ही लोग फिर वो जिहाद करना शुरू कर देते हैं जी, हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ कहना जरूरी है जिसको वो हक समझ रहे होते हैं, तो उनके हक कह देने से ना किसी को कोई फायदा तो नहीं हो रहा होता और उल्टा जो है वो फसाद क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से ना हक बात में भी जरा सोच लेना चाहिए कि किसके सामने हक बात की जा रही है, ठीक है, जैसे कि वो हम पढ़ते रहते हैं बार बार वो हदीस के जहां पर तुम रोक सको हाथ से तो फिर रोको, जुबान से रोक सकते हो तो फिर रोको वरना दिल में बुरा समझो, तो ये बात तोलनी पड़ती है ना कि जी यहाँ पे मैं इफेक्ट कर सकता हूँ कि इफेक्ट नहीं कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर जुबान को बंद रखो और दिल में बुरा समझो, तो तोलेंगे नहीं तो फिर तो इस हदीस की रेलिवेंस ही खत्म हो जाएगी ना, फिर हर जगह जब अगर अच्छी बात बोल देंगे तो फिर इस हदीस की जरूरत ही क्या थी, इस नसीहत की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि जी ना गुनाह है ना सवाब है, तो फिर तो खामोशी रहना बेहतर है, यानी लायानी में मत पड़ो। और अगर बहुत ही दिल चाहे तो थोड़ी सी बात करके खामोश हो जाओ, ठीक है। ये जो है ना एक हुनर है कि जहाँ पर ज़्यादा बात करने का दिल चाह रहा है, वहाँ पर इंसान थोड़ी बात करके अपने आप को खामोश कर ले। ये सीखना पड़ता है, और सीखे बगैर जो है ना ये नहीं आता। इल्ला ये कि आप ऐसे, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो कि आप कम गो हो, ठीक है, फिर तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत बाय डिफॉल्ट मिली हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप कम गो हैं, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कम गो नहीं है ना, तो फिर आपको अपने आप को ब्रेक लगाना जो है ना, जुबान को ब्रेक लगाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। हर बात इसी तरह सोच समझ कर करते रहेंगे तो थोड़े दिनों में बुरी बात कहने से खुद ही नफरत हो जाएगी। जुबान की हिफाजत की एक तदबीर ये भी है कि बिला जरूरत किसी से ना मिलो, तन्हाई में खुद ही जुबान खामोश रहेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने दो बातें फरमाई कि एक तो ये कि जब इस तरीके से तुम कॉन्शियसली अपने आप को कंट्रोल करोगे, तो इंसान का मिजाज ऐसा है कि उसको ना चीज़ों की आदत हो जाती है, ठीक है। तो जिस चीज़ को भी वो ज़रा यानी जिस चीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ जो है ना वो थोड़े दिन के अंदर उसकी नेचर का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो बुरी चीज़ होती है तो वो भी थोड़े दिन, अगर आपके लिए वो नई बात है लेकिन है बुरी, ठीक है, पहले आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अगर आप अब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो पहले दिन तो वो आपको बहुत बुरी लगेगी, दूसरे दिन जो है वो उसकी बुराई आपके दिल में कम हो जाएगी, फिर जो है वो और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, हत्ता कि अगर आप उसमें लगे रहेंगे ना, तो फिर वो आपको फिर बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे कि हम अगर कभी मछली मार्केट में जाएं, ठीक है, फिश मार्केट में जाएं, जी मछली खरीदने का खाने का दिल चाह रहा है, तो जब आप वहां पर जाएंगे ना, तो आपको कितनी यानी वहां पे कदम रखना मुश्किल होगा आपके लिए, कितनी ज्यादा वहां पर स्मेल होगी मछली मछली की, राइट। लेकिन जब आप अंदर चले गए ना, अब आप वहां पर दुकान वाले के साथ मछली के भावताव भी कर रहे हैं, डिफरेंट दुकानों में जा रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म की मछली की किस्में देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर में ना वो जो स्मेल है ना, उसका एहसास ही आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका एहसास दोबारा कब होगा, जब आप उस मार्केट से बाहर निकलेंगे, ठीक है, उस वक्त भी इसका एहसास नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आप जब बाहर निकल करके अपने घर आकर के अपने कपड़े चेंज करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपके उन कपड़ों के अंदर कितनी बुरी स्मेल बस चुकी है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो स्मेल जो है वो नेचुरल बन गई थी, ठीक है, अब आपको उसका एहसास ही नहीं हो रहा था। अब जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे या उस कपड़े को अपने से अलग करेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि उसके अंदर कितनी स्मेल बसी हुई है, ठीक है। यही मामला गुनाह का भी है। तो जब थोड़े दिन अपने आप को जरा फोर्स करते हैं किसी नेकी के काम के ऊपर, तो फिर वो नेकी का काम भी जो होता है ना, वो आपकी आदत सानिया बन जाता है, या आपके नेचर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मसला सारा का सारा यही है कि ये फोर्स करने वाली जो बात है ना, ये इतनी आसान नहीं होती है। तो अगर कर गए तो फिर तो बात ही बहुत अच्छी है कि भाई आपका मसला ही हल हो गया। फिर दूसरी तदबीर यह है कि बिला जरूरत लोगों से ना मिलो। तो यानी ये जो शौक होता है कि जी हर वक्त किसी के साथ मिलना है, हर वक्त कहीं ना कहीं जाना है, यानी पार्टीज अटेंड करने का जो शौक होता है, या हर वक्त बाहर जाने का शौक होता है, बाहर खाने का शौक होता है, तो ये फिर ऐसा शौक है कि जिसकी वजह से जुबान का इस्तेमाल जो है ना वो करना पड़ता है। बिकॉज आप जब लोगों से मिलेंगे तो आप खामोश रह करके तो लोगों से नहीं मिलेंगे ना, तो अब जब करना पड़ेगा तो फिर जाहिर है फिर आप कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे अपनी जुबान को, आदत तो नहीं बना सकते फिर खामोश रहने की। तो मशायख के पास जब इंसान आता है, तो फिर वो जो मुजाहिदात बताते हैं ना, तो उनमें से ये एक कम बोलने वाला मुजाहिदा भी है कि अपने आप को कॉन्शियसली जुबान को कंट्रोल करने की कोशिश करो। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किल्लतो इख्तलात माल अनाम, कि जो अवामुन नास होते हैं उनके साथ इख्तलात में भी कमी करो, ठीक है, मिलना जुलने में भी कमी करो। और इससे मुराद क्या होती है कि जो जरूरी मेल जोल है, जिसके अंदर आपके यानी दफ्तरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो मेल जोल होता है वो भी शामिल हो जाता है जरूरी जरूरत के तहत में, और जो रिश्तेदारों के साथ जो मेल जोल करना होता है वो भी जरूरत के अंदर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो मेल जोल होते हैं आदतन जो लोग करते हैं, खुसूसन हमारे मुल्कों के अंदर, तो जी दिन में दफ्तर में होते हैं, फिर वापस घर आते हैं, तो घर में खाना वाना खा करके उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो कई घंटे दोस्तों के साथ लगा करके फिर वापस घर आते हैं, ठीक है, हत्ता कि उस वक्त सारे घर वाले सो चुके होते हैं। तो इस किस्म की हरकतों को छोड़ना पड़ता है, वरना इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती। इसके बाद गुस्सा और उसका इलाज। तो गुस्सा जो है वो बड़े बातनी अमराज में से एक मर्ज है, ठीक है। बातनी अमराज हैं तो बहुत सारे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़े थे मुख्तलिफ नामों के अमराज शुरू में हजरत ने लिखे हैं, लेकिन उनमें जो है ना वो मशाइख फरमाते हैं कि तीन अमराज ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा अहम हैं, या ये कि वो जड़ सॉरी तने की हैसियत रखते हैं। जैसे एक दरख्त होता है ना, उसके अंदर तना होता है और तने से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो तने की हैसियत जो रखते हैं तीन बातनी अमराज, उनमें से पहला वाला शहवत है, ठीक है, दूसरा वाला गुस्सा है, और तीसरा वाला जो है वो तकब्बुर है, ठीक है। तो ये तीन मेजर बातनी अमराज हैं, और बाकी जो बातनी अमराज होते हैं वो इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो गुस्सा उनमें से एक है और बहुत बड़ा बातनी मर्ज है। फरमाते हैं कि गुस्से में अकल ठिकाने नहीं रहती और अंजाम सोचने का होश नहीं रहता, ठीक है। यानी ऐसे इंसान की अकल के ऊपर ये गुस्सा छा जाता है कि उसको फिर समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, ठीक है। यानी नफ्स जो है ना, जब वो गुस्से की बीमारी उसके अंदर लगी हुई हो तो वो ऐसा यानी उड़ता है, ठीक है, ऐसा उड़ता है कि अकल के होश गुम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जुबान से भी मौका बे मौका बात निकल जाती है और हाथ से भी ज्यादती हो जाती है, ठीक है। जुबान से ज्यादा निकलती है बात, क्योंकि जुबान को रोकने के लिए पुलिस फोर्स नहीं होती है, ठीक है। कोई पुलिस फोर्स, कोई काजी का निजाम, कोई इस किस्म की चीज जुबान को नहीं रोक सकती, ठीक है। तो गुस्से का इजहार जो है ना वो जुबान से ज्यादा होता है और हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन हाथ से जो गुस्से का इजहार है वो हर जगह नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हाथ से भी गुस्से का इजहार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़े से यानी साहिब सरवत हैं या आपका थोड़ा सा मुआशरे में मकाम है तो आपको पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। या ये कि आपके आपने जिस पर वो गुस्सा निकाला है उसके हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके खिलाफ कुछ कर सके। लेकिन अगर आप जो है वो बरतानिया में जाकर के रहना शुरू कर दें, अमेरिका में जाकर के रहना शुरू कर दें, तो वहां पर अगर आपने हाथ किसी के ऊपर उठा दिया, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो फिर तो वो 911 को कॉल करेंगे और फिर वो पुलिस वाले आके आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो इस पुलिस के खौफ की वजह से ना हम बाहर के मुल्कों में ना अपने हाथ पैर वाले गुस्से का इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुदा का खौफ नहीं होता, पुलिस का खौफ होता है असल में। तो लेकिन इजहार जो है वो जुबान से और हाथ दोनों से गुस्से का होता है, इसलिए गुस्से को काबू में रखना चाहिए। और उसको रोकने का तरीका ये है कि जिस पर गुस्सा आया है उसके सामने से फौरन हट जाए, ठीक है। यानी अकल जो है ना वो इतनी तो होना इस काबिल कम अज कम कि वो ये रिकग्नाइज कर सके कि हाँ इस वक्त मेरे ऊपर गुस्सा चढ़ गया है और मुझे जो है ना वो उसको उतारने के लिए कोई स्टेप लेना है, ठीक है, ये स्टेप लेना है कि मैं वहां से हट जाऊं, ठीक है। तो ये उसी वक्त आप कर सकते हैं जबकि आपका गुस्सा जो है वो उस दर्जे का ना हो कि आप ये भी ना समझ सकें कि आपके ऊपर गुस्सा आया हुआ है और आप ये भी ना याद रख सकें कि मुझे इसके हल में क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी हट जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा भी लोगों की कैफियत होती है कि वो फिर ये कोई 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 एक्शन ले ही नहीं पाते अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई इस वाली कैफियत का शिकार हो ना तो फिर उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यानी अगर किसी की गुस्से की ऐसी कैफियत हो कि वो बिल्कुल ही माउफ हो जाता हो, ठीक है, तो उसका हल ये है कि ऐसे शख्स को जो है ना वो ऐसी वेन्यूज में जाना चाहिए, ऐसी महफिल में जाना चाहिए या ऐसी बातों को सुनने का इंतजाम करना चाहिए जब उसके ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ ना हो, कि जिनसे ना ये बातें जो है ना उसको बार बार एज अ रिमाइंडर मिल रही हो, ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है वो हर वक्त नहीं होता, 24 घंटे को इंसान गुस्से में नहीं रहता, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको कि 24 घंटे गुस्से की कैफियत हो, ठीक है। तो गुस्से की कैफियत तो उस वक्त होती है जब उसके मिजाज के खिलाफ कोई मामला हो रहा होता है, ठीक है, तो जिस वक्त आपके मिजाज के खिलाफ ऐसा मामला नहीं हो रहा है और आपके ऊपर गुस्सा तारी नहीं है, तो उस वक्त तो आपकी अकल जरा ठिकाने में होती है ना, होश में होती है। तो ऐसे मौकों के ऊपर ना, ऐसे शख्स को जो कि रिकग्नाइज करता हो कि हाँ वो वाकई गुस्से का तेज है, तो उसको फिर इन रिमाइंडर्स का इंतजाम करना चाहिए अपनी जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि ये रिमाइंडर्स जो होते हैं ना, वो अगर उसको ज्यादा मिलते रहेंगे ना, तो जब उसके ऊपर गुस्सा तारी होगा तो उस वक्त ये रिमाइंडर्स जो है ना, वो उसके दिमाग के अंदर ना रेजोनेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, ये वाइब्रेशन रेजोनेशन वगैरह बजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बजना शुरू हो जाएंगे ना उसके दिमाग के अंदर, तो फिर वो उस कैफियत में भी समझ सकेगा कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या कैफियत तारी हो रही है उसके ऊपर, और फिर जो है ना वो उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकेगा, जैसे कि ये फौरन हट जाने वाला कदम है। तो रिमाइंडर से फिर इंसान को फायदा होता है। फिर सोचे कि जिस कदर ये शख्स मेरा कसूरवार है, इससे ज्यादा मैं अल्लाह ताला का कसूरवार हूँ, ठीक है। अब ये वाली सोच जो है वो तो फिर माशाल्लाह और भी बड़ी सोच है कि अपने आप को अल्लाह ताला का कसूरवार समझे, ठीक है। तो ये भी रिमाइंडर से इन चीजों में फायदा होता है, ठीक है। नेकों की मजलिस में जब जाते रहते हैं, तालीम में बैठते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह की बातें इंसान को अगर सुनने को मिलती रहे ना, तो फिर गुस्से के वक्त में ये बातें याद आ जाती हैं कि भाई मैं तो कितना गुनाहगार हूँ, तो मैं उस शख्स को इतना सजा देने का इरादा कर रहा हूँ कि जिसने मेरे साथ का एक गलत मामला किया, हालांकि मैंने तो अल्लाह ताला के साथ पता नहीं कितने गलत मामला किए हैं, और अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे छूट दी हुई है, अभी तक जो है वो मुझे खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अभी तक मुझे दोनों के सामने जलीलो ख्वार नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से सोच को जो है वो अपने जहन में लेकर के आएगा, तो फिर अगले बंदे की खता माफ करना उसके लिए आसान हो जाएगा। फरमाया कि जैसा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी खता माफ कर दें, ऐसे ही मुझे भी चाहिए कि मैं उस शख्स का कसूर माफ कर दूं, और जुबान से आउज़ बिल्लाह बार बार पढ़े, ठीक है। अब ये जहन सोच वाली बात के बाद अगला दर्जा क्या, अगला स्टेप क्या, कि जुबान से फिर इन बातों को पढ़े, जैसे कि आउज़ बिल्लाह पढ़े कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ मैं, और मशाइख ने ये भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो दुरूद शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि उससे गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और मजीद भी बहुत सारी टिप्स लिखी हुई हैं, उनमें से चंद यहाँ लिखी हैं कि पानी पी ले या वुजू कर ले, इससे भी गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर जब अकल ठिकाने आ जाए, तो उस वक्त अगर इस कसूर पर सजा देना मुनासिब हो, मसलन सजा देने में उस कसूरवार की भलाई है। अच्छा, ये जो है वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले ये कहना था कि हाँ, ये कि जब नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था ना किसी के ऊपर, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते थे, ठीक है। अगर खड़े हुए होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे, अगर बैठे हुए होते थे तो लेट जाते थे, ठीक है। या ये कि उस जगह को तब्दील कर लेते थे, उस कमरे से किसी दूसरी जगह पे चले गए, ठीक है। तो ये भी सुन्नत का इलाज है गुस्से का, यानी खुद सुन्नत वाले इलाज है कि अपने पोजिशन को चेंज कर ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं था, तो इस वजह से जहन में आ गया, नबी तरफ से आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर लोग सवाल करते हैं कि भाई अगर हम गुस्सा ना करें तो फिर लोग हमें अब्यूज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपको ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें, ठीक है। या ये कि आपके बच्चे जो है वो आपको अब्यूज करना शुरू कर दें, ठीक है, या इवन बीवी भी आपको अब्यूज करना शुरू कर दें, इनको तो कभी गुस्सा ही नहीं आता, तो चलो जो जो चाहे मैं इनको कहूँ, जो चाहे मैं इनके साथ करूँ, ठीक है। तो जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे ना, चाहे बीवी बच्चे हों, चाहे जो है वो दफ्तर के एम्प्लॉय हों, चाहे जो है वो वैसे ही कहीं किसी जगह पे हों, ठीक है, जो कि आपके अंडर थे, तो फिर वो इंसानी नेचर भी है, और जाहिर है वो भी कोई नेक फरिश्ते तो नहीं होते ना, तो वो फिर आपको अब्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके गुस्सा ना करने की वजह को। तो इस वजह से गुस्सा तो करना पड़ता है ना फिर, तो उसका भी हल बताया कि वो गुस्सा जो करें ना, तो वो ऐसे करें जिसको कहते हैं फेक गुस्सा, ठीक है, फेक गुस्सा, नकली गुस्सा, नकली से मुराद फेक यहाँ पर, ठीक है। तो वो फेक गुस्सा कैसे कैसे करें, वो ऐसे करें कि जब अकल ठिकाने में आ जाए, जिस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, उस वक्त उनको रेप्रिमेंड ना करें, ठीक है, ये कंट्रोल करें उस वक्त अपने आप को, उस वक्त अपनी जुबान को भी कंट्रोल करें, और उस वक्त अपने हाथ पैर को भी कंट्रोल करें जिस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन गुस्सा जो है वो एक हाई टाइड की मानिंद होता है, ठीक है, एक जैसे मौज आती है ना इंसान के ऊपर, तो तो वो मौज की मानिंद होता है, और मौज जो है ना वो जैसे चढ़ती है वैसे ही उतर भी जाती है, ठीक है। परमानेंट हाई टाइड नहीं होता कोई चीज, ठीक है, और मौज भी परमानेंट नहीं होती, तो ये चढ़ती है और ये उतर जाती है। तो उतरने का इंतजार करें, जब उतर जाए ना तो फिर उसके बाद जिनकी तरबियत आपको करनी है, वो जरूरत है उनकी तरबियत करनी, अगर तरबियत नहीं करेंगे तो या तो वो आपको अब्यूज करेंगे, या ये कि उनका अपना नुकसान भी तो होगा ना। अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं करी तो भाई वो औलाद सही कैसे बनेगी, कैसे अच्छी इंसान बनेगी, अच्छी मुसलमान बनेगी, ठीक है। तो तरबियत तो आपने करनी है ना, तो फिर जब गुस्सा उतर जाए तो फिर उनको कसूर पर सजा देना मुनासिब मालूम हो तो वो आप सजा दें, और लोग सजा देने की भी फिर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि क्या सजा दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, ठीक है। मसलन सजा देने में उस कसूरवार की भलाई है, जैसे अपनी औलाद है कि उसकी इसलाह जरूरी है, या सजा देने में दूसरे की भलाई है, जैसे उस शख्स ने किसी पर जुल्म किया था और मजलूम की मदद करना और उसका बदला लेना जरूरी है, ठीक है। अगेन आप ये काम कब कर सकते हैं, जब आपके पास ये अथॉरिटी हो, यानी मजलूम को सजा देने वाली अथॉरिटी हो तो आप उसको सजा देंगे। आप उसको अगर नहीं सजा देंगे तो फिर वो अगले यानी सॉरी जालिम को सजा देंगे, अगर आप नहीं सजा देंगे तो कल को वो किसी और के ऊपर जुल्म करेगा, ठीक है, और मजलूम जो है वो फिर उसका ईमान भी उठ जाएगा इंसाफ के ऊपर से, और उसका भी तो दिल खराब होगा ना, फिर उसके दिल खराब होने की वजह से भी तो फसाद पैदा हो सकता है मजलूम के। तो इस वजह से सजा देना जो होता है ना ये जरूरी होता है, हर मौके पर नहीं होता लेकिन अक्सर मौकों के ऊपर सजा देना जरूरी होता है, ठीक है, वरना मुआशरे के अंदर फिर बिगाड़ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसका बदला लेना जरूरी है, तो पहले खूब समझ ले कि शरीयत के मुताबिक उस गलती की कितनी सजा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इल्म चाहिए होता है और बहुत तहमुल मिजाजी चाहिए होती है, जब भी काजी लोग जो है ना वो इस किस्म के फैसले करते हैं कि कितनी सजा देनी है, ठीक है, क्योंकि उनको शरीयत का इल्म होता है, तो कितनी सजा होनी चाहिए, फिर इसी कदर सजा दे दे, उससे ज्यादा ना दे। चंद रोज इस तरह गुस्सा रोकने से खुद ब खुद काबू आ जाएगा और तेजी नहीं रहेगी, ठीक है। बुग्ज़ और अदावत भी इसी गुस्से से पैदा हो जाती है, जब गुस्से की इसलाह हो जाएगी तो बुग्ज़ भी दिल से निकल जाएगा, ठीक है। दिल में जो कीना और बुग्ज़ वाली कैफियत होती है, कल बताया था कि कीना जो है वो गुस्से ही का दूसरा नाम होता है, लेकिन ये ऐसा गुस्सा होता है जो कि ज़ाहिरी तौर पर नजर ना आ रहा हो बल्कि इंसान के यानी दिल का हिस्सा बन गया हो या उसके नफ्स का हिस्सा बन गया हो, ठीक है, उसके वजूद का हिस्सा बन गया हो। तो ये जो बोझ और कीने वाली कैफियत होती है उमूमी तौर पर कब दिल के अंदर पैदा होती है, जब आप अपने गुस्से का इजहार ना कर पा रहे हो, ठीक है। वरना क्या होता है कि अगर आपने गुस्से का इजहार कर दिया ना किसी जिससे आपको गुस्सा आया था, उसको आपने मार लिया या उसको आपने खूब खड़ी खड़ी सुना दी, तो आपका गुस्सा उतर गया, ठीक है, अब जो है ना वो आपके दिल का हिस्सा नहीं रहा बल्कि वो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप ये काम नहीं कर पाते हैं ना, वो बड़ा आपसे ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, ठीक है, जुबान का ज्यादा तेज है, तो अब आप उसको नहीं सुना सकते, ठीक है, तो फिर ना ये आपके दिल का हिस्सा बन जाता है और ये कीना कहलाता है। इसी को इसके बोझ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और कीने का लफ्ज ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो फिर इंसान के दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी आप में से अक्सर को वो बयान मिला होगा हमारे शेख हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब का, कि कीने के इलाज के बारे में था, तो उन्होंने बहुत सारी अहदीस और वाक़ात और मुख्तलिफ़ चीज़ों से समझाया था कि कीना जो होता है वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है और उसको ख़त्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो गुस्से के बारे में किसी को कोई सवाल हो, या इवन पीछे जो ज़्यादा बोलने की हिर्स के मुताबिक बात करी थी, तो अगर कोई सवाल पूछना चाहे। गुस्सा ही वो बीमारी है कि जिसकी वजह से ना इंसान अपने रिश्तेदारी के ताल्लुकात ख़राब करता है, इसी की वजह से आज के दौर में खुसूसन इसी की वजह से घरों के अंदर तलाक़ें हो जाती हैं, भाई बहन के रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं गवारा करते हैं, ठीक है। बाप जो है वो बेटे को घर से निकाल देता है, या बेटा जो है वो अपने माँ बाप का दिल तोड़ देता है गुस्से की वजह से, ठीक है। तो ये गुस्सा जो है वो कोई मामूली बात नहीं होती, बल्कि इससे जो है वो हम बहुत बड़े बड़े अपने दीनी और दुनियावी दोनों नुकसान करते हैं। कभी गुस्से में आकर के हम कोई ऐसा फैसला कर देते हैं जिसकी वजह से हमें माली लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, बस किसी पार्टनर के खिलाफ जो है वो बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जो है वो अब दिल में ये ठान ली और ऐलान कर दिया कि अब तो मैंने उसके साथ काम नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो आपने काम नहीं करने का इरादा कर लिया तो उससे फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो आपकी प्लानिंग्स थी, वो सारी की सारी मुतासर होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई एक टेम्प्रेरी सी बात थी, वो खत्म हो जाती, रिजॉल्व हो जाती, लेकिन अब आपने उसकी बेसिस के ऊपर एक परमानेंट फैसला कर लिया, तो इस परमानेंट फैसले की वजह से तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, तो आगे चलते हैं कि हसद और उसका इलाज। किसी को खाता पीता या फलता फूलता देखकर दिल में जलना और उस शख्स की नेमत के जवाल से खुश होना, इसको हसद कहते हैं। ठीक है, दिल में जलना यानी बुरा फील करना, दिल के अंदर अपने अपने यानी ये भी यानी अकल ही की बात होती है कि अकल को जो है ना वो बहुत बुरा लगे कि ये क्यों फल फूल रहा है, क्यों जो है वो उसको इतनी सारी नेमतें मिली हुई हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी यानी चाहना कि उसके पास से ये नेमत छिन जाए। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं ना, तो फिर उसको हसद कहते हैं। एक टर्म है गैरत के नाम पर गुस्सा, प्लीज एक्सप्लेन। गैरत के नाम पर जो गुस्सा होता है ना, तो ये जो लफ्ज गैरत है ना, तो इसको उमूमन हमारे माशरे के अंदर जो है ना बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, और अब्यूज की हद तक एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो गैरत जो जो लफ्ज है, ये है तो बहुत अच्छा लफ्ज और ये बहुत मकसूद है, यानी इज डिजायर्ड टू बी गैरतमंद। ठीक है, बेगैरत होना जो है वो अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है, उसके लिए बाकायदा एक टर्म है, क्या कहते हैं उसको, अरबी जुबान के अंदर बेगैरत इंसान को दबस या बस किस किस्म का कोई लफ्ज है, हाँ दौस, दौस ना जी। तो खैर, बेगैरती जो है वो अल्लाह ताला को बे इंतहा नापसंद है। ठीक है, लेकिन ये गैरत जो होती है ना, ये गैरत जो है अल्लाह ताला को जो पसंद है ना, वो दीन की बाउंड्रीज के अंदर पसंद है। ठीक है, शरीयत, हाँ दयूस, एग्जैक्टली दयूस। तो अल्लाह ताला को ये गैरत जो है वो शरीयत की बाउंड्रीज, दीन की बाउंड्रीज के अंदर पसंद है। ठीक है, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे दीन की खातिर गैरत हो। ठीक है, अल्लाह की खातिर मोमिन के दिल में गैरत हो, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की वजह से उसके दिल में गैरत हो, और जहां शरीयत की यानी हदूद को पामाल किया जा रहा हो, वहां पर उसकी गैरत जो है ना वो उसको गुस्सा दिलाए। ठीक है, ये जो गुस्सा है ना, ये दीन की खातिर डिजायर्ड है, यानी महमूद है ये गुस्सा दीन की खातिर। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला दीन के अलावा दूसरी चीजों के लिए, जिसको कि बेसिकली अपने जिसको कहते हैं अपना नफ्स, ठीक है, या अपने खानदानी ताल्लुकात खाली, या अपने जो है वो ऐसी दुनियावी जो अपने प्रायोरिटीज बनी हुई होती हैं, तो उनकी खातिर गैरत में आ जाना और फिर उसकी वजह से गुस्सा आ जाना और फिर उसके नतीजे में दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो इसकी इजाजत हमारा दीन नहीं देता है। तो गुस्सा जो है वो एक्चुअली बल्कि गुस्सा ही खाली नहीं, ये जितनी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला हमसे खत्म नहीं करना करवा देना चाहते। ठीक है, यानी इवन शहवत, ये नहीं है कि शहवत खत्म हो जाए हमारे अंदर से, बिल्कुल जीरो शहवत होनी चाहिए, नहीं, बल्कि दीन हमारा ये कहता है या ये चाहता है कि शहवत भी आपके अंदर हो लेकिन शरीयत के दायरों में हो, दायरे में हो। ठीक है, और ये जो है वो उससे एक्सीड ना करे, बस दैट्स व्हाट इट इज, बिकॉज ये दीन जो है ना, ये दीन फितरत है, ये इंसान को जो है वो कोई हैवान नहीं बनाना चाहती और ना ये इंसान को जो है पत्थर बनाना चाहती है। ठीक है, ये दीन, ये शरीयत ये नहीं चाहती। ठीक है, इंसान को बेसिकली वो अल्लाह ताला की रजा के दायरे में रखना चाहती है। तो शहवत भी डिजायर्ड है, गुस्सा भी डिजायर्ड है, हत्ता के एक लेवल ऑफ तकबुर भी डिजायर्ड है। ठीक है, लेकिन वो भी शरीयत के दायरे में होना चाहिए। ठीक है, तो खैर, ये जो हमारे यहाँ जिसको कि ऑनर किलिंग्स कहा जाता है, तो ऑनर किलिंग्स जो होती है ना, उनमें भी फिर तफसीर होती है वो क्या चीज़ जो है वो जायज़ है और क्या चीज़ जायज़ नहीं है। तो इसके लिए फिर यानी हमारे मुफ्ती हजरात और काजी हजरात जो होते हैं वही इसकी प्रॉपर रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है, باقاعدہ شریعت کے اندر ہے. ایون اگر کسی کے گھر کے اندر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, بے حیائی والا معاملہ ہو جاتا ہے, تو شریعت نے اس کا پورا پروسیس بتایا کہ تم اس کے ساتھ اس کا حل جو ہے وہ اس طریقے سے کرو. ٹھیک ہے, بیوی کو تھوڑی ہوتا ہے کہ جی جو اب مارنے کی اجازت ہے تو کھانا اچھا نہیں بنایا تو اس وجہ سے بیوی کو مار لو. ٹھیک ہے, بیوی کو مارنے کی اجازت ہے لیکن وہ اسی وجہ سے ہے جب وہ بے حیائی کا کام کرے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو طریقہ ہے مارنے کا وہ طریقہ کوئی گولی سے مارنے کے گن سے مار دینے والا طریقہ نہیں ہے, کہ اس کو جان سے ہی مار دو, بلکہ اس کا جو طریقہ ہے اسی کے تحت. تو بہرحال یہ ہو گیا حسد اور اس کا علاج. تو حسد کی تعریف ہم نے پڑھ لی. فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے, اس میں گناہ بھی ہے. ایسے شخص کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے جو کہ حسد میں مبتلا رہتا ہے, تو اس کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے نا. غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بے لذت ہیں, اس لیے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے یہ سوچے کہ میرے حسد سے میرا ہی نقصان ہے, کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں, اس کا کیا نقصان ہوگا جس سے میں حسد کر رہا ہوں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہیں تھا, اس کو نعمت کیوں دے دی گئی. ٹھیک ہے, یہی تو ہے حسد میں, کہ آپ جلتے ہیں اس کے اوپر یا اس کو ناخوش ہوتے ہیں اس کی نعمت کے اوپر, کیونکہ نعمت تو اس کو اللہ نے دی ہے, آپ نے کو تھوڑی دی ہے, یا کوئی آپ کے رشتہ دار نے کو تھوڑی اس کو اٹھا کے نعمت دے دی ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. تو جب اس کی نعمت کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں, خالی اس کے اوپر آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے. غرض یہ کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے, اور حاسد کا تکلیف میں رہنا ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ رنج اور غم میں رہتا ہے. جو اللہ کا مقابلہ کرے گا تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے حاسد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے. اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اس سے, کیونکہ حسد سے وہ نعمت ختم نہیں ہوگی, بلکہ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ سوچ لینے کے بعد اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرو. اب یہ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے سامنے نا پھر اپنے آپ کو فورس کر کے اس کی تعریف کرنے کی کوشش کرو, اور یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ انسان عقلی طور پر نا ذرا حسد کی برائی کو اگر سمجھ لے اور اس کے برے انجام کو سمجھ لے تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو حسد ہے اس کی بس کسی نہ کسی طریقے سے تعریف کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ کام واقعی وہ نہیں, یعنی یہ اس میں منافقت بھی نہیں چلتی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ یعنی جس سے حسد ہو جائے نا تو پھر ایون منافق بھی اس کی تعریف نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک ایسی ہے کیفیت ہے حسد والی, تو اس وجہ سے نا وہ تعریف کرتا ہی نہیں ہے جس سے اس کو حسد ہو. اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. اگر اس شخص سے ملاقات ہو تو اس کا احترام کرو اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. شروع شروع میں ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی, مگر رفتہ رفتہ آسانی ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو جب بھی نفس کی مخالفت کی جاتی ہے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیف جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے, اور آپ پھر ظاہر ہے اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں اس کے نا یعنی ان تکالیف کے اوپر, تو پھر اس سے رفتہ رفتہ آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, اس حسد سے آپ دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے, لیکن یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو یہ ان کی مراد ہے روحانی نقصان. ٹھیک ہے, آپ اس کو روحانی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیں. ٹھیک ہے, اپنے حسد کی وجہ سے. لیکن حاسد جو ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں, سورہ ناس کی تفسیر, بلکہ سورہ فلق کی تفسیر کے اندر ہم نے بات پڑھی تھی کہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ پھر اگر بہت زیادہ اس کا حسد بڑھ جائے اور وہ یعنی پھر نقصان پہنچانے پر اتر آئے تو پھر وہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جسمانی نقصان جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو تکلیف ظاہری طور پر تکلیف دے کر کے, ٹھیک ہے, جیسے کہ اس کی کسی چیز کو یعنی تباہ کر دیا, چوری کر لیا, آگ لگا دی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس کے املاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہی حاسد جو ہوتا ہے وہ پھر جادو ٹونے اور سفلی اعمال کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ وہ کب کرتا ہے, جب وہ فزیکلی یعنی بالکل ہی اپیرنٹلی جب نقصان نہیں پہنچا سکتا نا, کہ اس کو کوئی چوٹ لگا دے، اس کی چیز جلا دے، جب یہ بالکل نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ نقصان پہنچا سکے، تو پھر جو ہے نا یہ والا راستہ اختیار کرتا ہے، جادو ٹونے والا راستہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے نا اس کو کچھ فزیکلی کرنا نہیں پڑتا، بلکہ کسی عامل کی مدد لینی ہوتی ہے، کسی جادوگر کی مدد لینی ہوتی ہے، اور وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ ایسا عمل کر کے اس کے اوپر کرتا ہے کہ وہ پھر کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے طریقوں سے نقصان نہیں پہنچا پا رہا تھا، ٹھیک ہے، جب بھی اس نے پھر جادو کا راستہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ٹونا وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت کبھی کبھار واقعات سنا کرتے تھے جادو ٹونے کے، کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا یا کسی کے اوپر جو ہے وہ جنات کا سایہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ مذاق میں اڑایا کرتے تھے ان باتوں کو لوگ، ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی ایک دفعہ میں صرف 10 دن کے لیے کراچی گیا، اور اس 10 دن میں مجھے جاننے والوں نے کم از کم 5 یا 6 غالباً ایسے کیسز بتائے جو کہ کنفرمڈ جادو کا شکار تھے، ٹھیک ہے، صرف اس 10 دن کے چھوٹے سے ٹرپ کے اندر۔ تو اس کے بعد یہاں پر واپس آ کر کے اس موضوع کے اوپر بیان بھی کیا تھا، ویب سائٹ پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسد کا معاملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائمز حسد از انکنٹرولیبل، ون ٹرائز ٹو اوائڈ اٹ بٹ اگین اٹ کمز ٹو مائنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے تدبیریں لکھی ہیں تو ان تدبیروں کو کم از کم استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر یو ہیو ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو کسی بیماری کا پتہ لگتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے سیلف میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں، خود سے جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹپس مل جاتی ہیں کہ جی اگر یہ نزلہ کھانسی ہو جائے تو آپ ایسے کر لیں، اور یہ والا ٹوٹکا استعمال کر لیں، اور فلانی چیز کو دودھ گرم کر کے پی لیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ شہد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہلدی کو جو ہے وہ گرم کر کے شہد کے اندر ڈال کر کے اس کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس سے وہ بیماری اگر کم ہوتی ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن کرنے کے باوجود کنٹرول نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں جی، پھر آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی ڈاکٹر صاحب درد بہت زیادہ ہو گیا، میں نے تو کر لیا، لونگ بھی لگا کر کے اپنے منہ میں کوشش کر لی، لیکن نہیں جا رہا، اب آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ کریں جی اس کا کچھ علاج، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو انہوں نے یہاں پہ ٹوٹکے یا ٹپس وغیرہ لکھی ہیں تو ان کو کر کے دیکھنے، اگر علاج نہیں ہوتا تو پھر دکتور کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو دکتور صاحب پھر پرسکرپشن لکھتے ہیں، اور وہ جو روحانی دکتور ہوتے ہیں ان کے یہاں پرسکرپشن بھی آسان سی ہے، کہ پھر وہ شروع میں تو آپ کو ایک روحانی یعنی وہ جو معمولات ہوتے ہیں وہی بتا دیتے ہیں، پھر آگے آگے لے کے چلتے ہیں جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی محبت اور اس کا علاج، مال کی محبت ہی ہے تو ذرا لمبا ٹاپک تھوڑا شروع کر لیتے ہیں، کم از کم مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو دنیا از اکول ٹو مال، یہ انہوں نے بات اس طرح سے کری ہے، ویسے تفصیل حضرت نے دوسری جگہوں پر جو فرمائی ہے اور دوسرے مشائخ نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ مال ہی خالی دنیا نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی فکر رہے گی کہ مال کس طرح آئے اور کیوں کا جمع ہو، یعنی کیسے جمع ہو، ایسی چیزیں ہو جائیں، ایسا گھر بن جائے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنا چاہیے، جب دن رات دل اسی میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایسی برائی ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا مزہ چھن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر کمایا ہے دنیاوی نیتوں کے ساتھ تو یہ سب تو نہیں جائے گا قبر کے اندر، وہ تو اعمال جائیں گے جو اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیے تھے، چاہے جس بھی شکل کے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا ہے، تو پھر اس کا بظاہر مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو حرام حلال کا کچھ خیال نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا جب انسان بزی ہو جاتا ہے نا اور اتنا زیادہ وہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کے حلال سرٹیفیکیشن کو چیک کر سکے، ठीक है, तो फिर वो जल्दी में फैसले करने होते हैं और दूसरों के प्रेशर में फैसले करने होते हैं। एक ये भी तो होता है ना, आप खुद तो बड़े दीनदार हैं, आप तो खुद हलाल ही करना चाहते हैं, लेकिन आपने पार्टनरशिप्स करनी बेदीन लोगों के साथ। ठीक है, अब वो पार्टनर जो है वो तो भाई कहेगा यार तुम, मतलब तुम मौलवी, ठीक है तुम अपनी जिंदगी में मौलवी हो, तुम मस्जिद जाया करो, तुम रोजे रखा करो, मैं तुम्हें मना को थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो भाई अगर बिजनेस को नुकसान हुआ तो मेरा भी तो नुकसान होगा, मेरे बच्चों का भी तो नुकसान होगा, तो तुम अपने मौलवीपन को जो है ना वो साइड पर रखो यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है, वो ये कहेगा आपसे। और जाहिर है फिर आप उसको शुरू में शायद रेजिस्ट कर भी लें, लेकिन इवेंचुअली जो है वो जब थोड़ा लॉस वॉस होगा आपके हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से, अल्लाह ताला आजमाते भी तो है ना कि कौन पक्का है कौन कच्चा है, तो लॉस भी होता है राइट। तो लॉस वॉस जब होगा तो फिर आप हो सकता है उसके प्रेशर के अंदर आ जाएं, तो फिर हलाल और हराम का ख्याल नहीं रहता, सही मुराद होती है। फिर बाद में जब आप एक दफा हराम में पड़ जाते हैं तो फिर ख्याल ही खत्म हो जाता है, फिर अपने और दूसरे के हक में फर्क नहीं रहता, ना झूठ और धोखे की परवाह होती है, बस यही नीयत रहती है कि कहीं से आए और हम उसको समेटें। चुनांचे हदीस में आया है कि दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाहों की जड़ है। ठीक है, ये हम अक्सर इस हदीस का तकरार करते रहते हैं कि हुब्बु दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, ज़ादु तालिबीन के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। जब ये ऐसी बुरी चीज़ है तो हर मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि इससे बचे और अपने दिल से इस दुनिया की मोहब्बत निकालने की कोशिश करें। इसका एक इलाज तो यह है कि मौत को कसरत से याद करें। ठीक है, इलाज नंबर वन, मौत को कसरत से याद करें। ठीक है, मौत का जिक्र जो है इससे दुनिया की मोहब्बत इंसान की कंट्रोल होती है, और ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि किताब में लिखा पढ़ करके लगता है। तो मौत को याद करना, ये ना हम इसको पसंद करते हैं और ना हम जिनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उनको ये बात अच्छी लगती है। तो फिर जब हर तरफ से इसकी मुखालफत हो रही हो तो फिर इसको करना जो है ना वो थ्योरी से आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, लेकिन है इलाज इसके अंदर मौत को कसरत से याद करने का, और हर वक्त सोचे कि ये सब कुछ एक दिन छोड़ना है, जाहिर मौत के वक्त फिर इसमें दिल लगाने का क्या फायदा, बल्कि जिस कदर ज्यादा दिल लगेगा उसी कदर छोड़ते वक्त हसरत होगी। दूसरा ये कि ताल्लुकात ज्यादा ना बढ़ाए, जरूरत से ज्यादा सामान और जायदाद वगैरह जमा ना करे, गर्ज माल असबाब मुख्तसर रखे। ठीक है, यानी अपने जिसको कहते हैं ना पैर फैलाना, पर फैलाना, ये ज्यादा ना करे। अगर बहुत ज्यादा करेगा ना तो फिर समेटना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और मौत के वक्त तो समेटना पड़ेगा, उस वक्त तो कोई चॉइस भी नहीं होगी, तो जितना फैले होंगे उतना मुश्किल होगी समेटने के अंदर। तो जरूरत की हद तक रखे और ख्वाहिशात के यानी के अंदर ना दाखिल हो, यानी ख्वाहिशात की जो क्या कहते हैं उसको, जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अंदर दाखिल ना हो जाओ, जरूरत की जो रिस्ट्रिक्शन तक अपने आप को रखे। जरूरत की डेफिनेशन जो है ना कि जरूरत कहाँ तक है और कहाँ जरूरत की लिमिट खत्म होती है और ख्वाहिश की लिमिट शुरू हो जाती है, ये जो डिसीशन है ना, ये डिसीशन करना बहुत मुश्किल काम है, बल्कि ये यही मुश्किल है असल में। ठीक है, और इस यानी लिमिट को जो है ना ये शैतान यानी इसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर वो ज़रूरत पड़ती है किसी के साथ असलाई ताल्लुक की, बिकॉज यहीं पर फिर शैतान वो हमें फंसा देता है, ज़रूरत को ख्वाहिश बना देता है, ख्वाहिश को ज़रूरत बना देता है इस तरीके से। ठीक है, तो गर्ज मालो असबाब मुख्तसर रखे। तीसरे ये कि फजूल खर्ची ना करें, क्योंकि फजूल खर्ची करने से आमदनी की हिर्स बढ़ती है। ठीक है, जितना आप फजूल में खर्च करेंगे आप उतना आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादा की, और हिर्स से फिर सब खराबियां पैदा होती हैं। हिर्स यानी लालच, और लालच बुरी बला है। चौथा ये कि मुतवसत खाने और कपड़े की आदत रखे। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस के अंदर ना पड़े, खाने के मामले में, कपड़े के मामले में, गाड़ी के मामले में, घर के मामले में, और सैर सपाटे के मामले में, एक्स्ट्रावेगेंस जिसको कहते हैं ना उसके अंदर ना पड़े। पांचवा ये कि गरीबों के साथ ज्यादा बैठे, मालदारों से कम मिले, क्योंकि मालदारों से मिलने से चीजों की हवस पैदा होती है। ठीक है, ये ना समझे कि जी मैं तो नहीं चाहता दुनिया की मोहब्बत, बस क्योंकि मेरे दोस्त मालदार हैं तो उनके साथ जरा मेरा उठना बैठना हो जाता है। ठीक है, तो भाई दोस्तियां चेंज करनी पड़ती हैं अगर आप अपनी इस्लाह चाहते हैं तो। छठा ये कि जिन बुजुर्गों ने दुनिया से बेरगबती इख्तियार की है उनके किस्से और हिकायतें मुतालिया करें, क्या करे। सातवां यह कि जिस चीज से दिल को ज्यादा लगाव हो उसको खैरात कर दे या बेच दे, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसकी जान कहाँ अटकी हुई है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना पहले, उसके बाद फिर उससे अपने दिल को हटाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर खैरात ना भी कर सके तो कम से कम इतना तो ना होना कि जी हर वक्त उसी का ख्याल हो दिल के अंदर। इंशाअल्लाह ताला इन तदबीरों से दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी और दिल में जो दूर दूर की उमंगें पैदा होती हैं कि यूं जमा करें, यूं सामान खरीदें, यूं औलाद के लिए मकान और जायदाद छोड़ जाएं, जब दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी तो ये उमंगें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई सवाल है आपके पास तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आज की क्लास यहाँ रोकते हैं। कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस टॉपिक को खत्म करना है। ठीक, चाहे सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक मिनट, नेचुरल फिक्र होती है औलाद की, नेचुरल फिक्र होती है तो उसमें भी यानी वही ख्वाहिशात की अंदर जाए बगैर ज़रूरत की हद तक फिक्र करना वो शरीयत ने जायज़ करार दिया है, और उसमें फिर बस यानी वही है कि हराम से अपने आप को बचाए और यानी इतना ज़्यादा फिक्र ना करे कि जिसकी वजह से कि उनका दीन मुतासर हो और अपना दीन मुतासर हो, ठीक है। यानी अगर बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे तो फिर जाहिर है उस फिक्र के लिए आपको वक्त भी तो चाहिए होगा ना। ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने जो सेल्स दिए हैं तो वो सेल्स भी तो फिर लिमिटेड होते हैं ना, वो हर जगह तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनको ज़रा दीन के लिए बचा के रखना होता है, आखिरत की फिक्र के लिए बचा के रखना होता है, तो इस वजह से ना अपने आप को कंटेन करना, और ये कंटेन करने के लिए फिर जाहिर है सारा सारा लुबे लुबाब यही कि फिर मशवरों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खुद इंसान जो है वो जब किसी चीज़ में फंस जाता है तो फिर वो प्रॉपर जजमेंट उसकी मुतासर होती है, तो मशवरे से फिर फायदा होता है कि जी कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।